गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रुद्र भानु प्रताप, गोइंग टू स्टार्ट वैष्णव धर्म का उद्भव और विकास। सो लेट्स स्टार्ट वैष्णव धर्म का उद्भव और विकास। भगवान विष्णु को अपना प्रधान इष्ट देव और परमात्मा के रूप में मानने वाले भक्त वैष्णव कहे गए तथा तत्संबंधी धर्म दर्शन और सिद्धांत वैष्णव धर्म। विष्णु वैदिक देवता हैं जिनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया। वैष्णव धर्म में विष्णु संबंधी अवैदिक सूक्त और आख्यान निहित है। ऋग्वेद में देवताओं के ऐश्वर्य, पराक्रम, विस्तार आदि के अतिरिक्त उपनिषदों के ज्ञान, दर्शन और सिद्धांत आदि का भी समावेश इस धर्म में हुआ है। याज्ञिक कर्मकांड के स्थान पर भक्ति और उपासना का समावेश है। वैष्णव साधक की दृष्टि से पद्म्य तंत्र में कुछ भेद विवृत किए गए हैं, यथा भागवत, सात्वत, पांचकालिवित, एकांकित, तन्मय और पांचरात्रिक। पांचरात्रिकों और भागवतों में प्रधान भेद यह है कि पांचरात्रिक भगवान नारायण की आराधना करते थे और भागवत वार्ष्णेय अर्थात भगवान विष्णु के। वैष्णव धर्म का उत्कर्ष काल व ऐतिहासिक सर्वेक्षण। गुप्त काल में वैष्णव धर्म अथवा भगवत धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था। तत्कालीन युग में विष्णु या नारायण अथवा नर नारायण की पूजन और मूर्ति निर्माण बहुत अधिक प्रचलित था। स्थापत्य और साहित्य दोनों में विष्णु के विभिन्न रूपों का चित्रांकन हुआ है। उस साहित्य में अधिकांश शासक वैष्णव थे, इसलिए वैष्णव स्थापत्य और साहित्य की अधिकाधिक विकास होना स्वाभाविक था। कालिदास ने नारायण और विष्णु को समान माना है, अर्थात नारायण को नर का मित्र, जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया जा चुका है कि अर्जुन नर थे और भगवान कृष्ण नारायण। कालिदास के अनुसार भगवान विष्णु सागर तल पर सहस्त्र फरों वाले शेषनाग की सैया पर विश्राम करते थे और उनके फैले हुए चरण उनके पाद प्रदेश में बैठी हुई लक्ष्मी की गोद में शोभायमान थे। उनकी चार भुजाएं हैं जिनमें क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। उनके वक्ष पर कौतुभ नामक मणि शोभायमान है तथा निकट ही उनका वाहन गरुड़ सेवा के लिए खड़ा है। कालांतर में इसी वर्णन के अनुरूप शेष साई विष्णु की अनेक मूर्तियां गढ़ी गईं। स्पष्ट है कि उनकी महिमा वाणी और मन दोनों से परे है। आराधना और स्तुति में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के कार्य उनमें समाविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आरंभ में वे ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, मध्य में उनका धारण करते हैं और अंत में उसका विनाश करते हैं। गुप्त सम्राटों की मुद्राओं पर उनकी उपाधि परम भागवत उत्कीर्ण है, जो उनके वासुदेव उपासक और वैष्णव धर्मावलंबी होने का प्रबल प्रमाण है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे शासक भागवत धर्म के अनुयायी थे। उनकी मृदाओं और तात्कालीन अभिलेखों से वैष्णव धर्म संबंधी अनेक संकेत प्राप्त होते हैं। गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन के नाम से अभिहित किया गया है। उड़ीसा स्थित उदयगिरी में चतुर्भुज विष्णु की एक प्रतिमा जो 400 ईस्वी की है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अंतर्गत भीतरी में स्कंदगुप्त का एक स्तंभलेख विष्णु कृष्ण की मूर्ति का उल्लेख करता है, जिसके पूजन आदि के लिए ग्राम दान किया गया था। कुमारगुप्त के गढ़वा अभिलेख में विष्णु को भगवत कहा गया है। स्कंदगुप्त कालीन जूनागढ़ का अभिलेख 456 ईस्वी विष्णु के मंदिर के निर्माण का वर्णन करता है तथा वामन रूपीधारी विष्णु द्वारा बलि से लक्ष्मी को छल से हर लेने की बात उल्लेखित करता है। मध्य प्रदेश स्थित सागर के एरण नामक स्थान पर बुद्धगुप्त कालीन अभिलेख 483 ईस्वी से विदित होता है कि भगवान जनार्दन अर्थात वासुदेव के स्मरण और सम्मान में ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया था। महरौली के लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि चंद्र नामक सम्राट ने विष्णु ध्वज का निर्माण करवाया था। अपसद अभिलेख में वासुदेव पुत्र माधव के चरणों की लक्ष्मी द्वारा सेवा की बात उल्लेखित है। बुद्धगुप्त के दामोदर के अभिलेख में वर्णित है कि कौशिकी और कोका नदियों के संगम पर 12 क्षेत्र में हिमालय के शिखर पर 12 स्वामी और कोका मुखी स्वामी के मंदिर का निर्माण हुआ था। प्रायः उसी युग में उस क्षेत्र में दामोदरपुर, इसका वर्तमान नाम दिनाजपुर बंगाल के निकट इन्हीं दो देवताओं के निमित्त मंदिर का निर्माण हुआ है। हूर शासक तोरामण के एरण से प्राप्त 12 मूर्ति और उसके अभिलेख 12 रूप नारायण के मंदिर निर्माण का संदर्भ मिलता है। कदंब राजकुल के तगारे के अभिलेख में 12 अवतार का उल्लेख है। पूर्वी चालुक्यों का राज चिन्ह ही गरुड़ था, जो उनके वैष्णव होने का प्रबल प्रमाण था। उनके अधिकांश अभिलेखों का प्रारंभ 12 की वंदना से होता है। 12 अवतार की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति उदयगिरी गुहा की दीवार पर एक विशालकाय रूप में उभारी गई, जिसमें पृथ्वी की रक्षा करते हुए 12 रूपी भगवान को चित्रित किया गया है, जिसके दांत से अति लघुकाय नारी मूर्ति पृथ्वी पर लटकी हुई है। ऐसा 12 रूपधारी भगवान का उल्लेख कालिदास ने भी किया है। उनके ग्रंथों में मोरपंखीधारी कृष्ण का भी उल्लेख है। उनके भाई बलराम और उनकी पत्नी रुक्मणी की भी काफी संकेत है। गुप्तकालीन अनेक पुराणों में विष्णु के समस्त अवतारों का विशद विवरण मिलता है। मत्स्य, कच्छप, 12, नृसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि नामक 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। दक्षिण के चालुक्य वंशी शासक मंगलेश के आदेश से पर्वत पर कटे गुफा मंदिर में विष्णु और नारायण तथा 12 और नरसिंह की प्रतिमाएं गढ़ी गई थी। विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी उनकी चरणों को दबा रही हैं। एलोरा के दशावतार की विशाल विष्णु मूर्तियां तात्कालीन वैष्णव धर्म के प्रसार की उत्कृष्ट प्रतीक हैं। शेषशायी विष्णु की चरण दबाती हुई लक्ष्मी को दर्शित किया गया है तथा भगवान की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा विराज रहे हैं। नरसिंह, वामन, 12 और गोवर्धन धारी कृष्ण की भी आकर्षक और अभिराम मूर्तियां हैं। 12 मिहार में बिहार ने 12 मिहिर ने अपने वृह संहिता नामक ग्रंथ में विष्णु और भगवत की चर्चा की है। भगवत शब्द तत्कालीन भगवत संप्रदाय की ओर इंगित करता है, साथ ही विष्णु के भक्तों को भी व्यंजित करता है। अमर सिंह ने अपने कोश ग्रंथ अमर कोश में विष्णु को 29 विभिन्न नामों की चर्चा करते हुए वासुदेव को उनका पिता माना है। हर्ष के युग में भी वैष्णव धर्म की गति निरंतर प्रवाहमान थी। बाण ने हर्ष चरित में पांचरात्रिक और भगवत संप्रदाय का उल्लेख किया है, जिनके अनुयायी दिवाकर मित्र के आश्रम में रहते थे। भगवत लोग वासुदेव विष्णु की उपासना करते तथा अवतारवाद के सिद्धांत को मानते थे। अस्मार्त वैष्णव ब्रज के अधिपति, गायों को चराने वाले तथा गोपियों के प्रिय श्री कृष्ण की आराधना करते थे। कादंबरी में अनेक स्थलों पर कृष्ण के आख्यानों का उल्लेख है। हर्ष के समकालीन प्राग्ज्योतिषपुर अर्थात असम के शासक भास्कर वर्मा के कुटुंब के लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म का प्रसार राजपूत युग में भी तद्वत था। अनेकानेक अभिलेख, मंदिर और मूर्तियां इस कथन के प्रमाण हैं। लखीमपुर खीरी दानपत्र से विदित होता है कि विष्णु का पूजन ओम नमो नारायण के नाम से किया जाता था। कभी कभी ओम नमो भगवते वासुदेव इसको एक बार और सुने, कभी कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कहा जाता था। पहाड़पुर की कलाकृतियों में गोवर्धनधारी कृष्ण की भी आकृति है। जयदेव ने राधा कृष्ण संप्रदाय का उल्लेख किया है। प्रतिहार शासक भोज के अभिलेख में विष्णु को निर्गुण और सगुण का प्रतीक मानते हुए ऋषिकेश के रूप में वर्णित किया है। पूर्व मध्य युग में भी विष्णु अपने सहनामों के समाज में पूजित और आदृत थे, जिनमें वासुदेव नारायण, कृष्ण, मुरारी आदि, केशव, हरि, माधव आदि नाम अधिकाधिक प्रचलित थे। उपासकों द्वारा अत्यंत मनोनिवेशक पूर्वक उनकी स्तुति की जाती थी। इस युग में अनेक विष्णु मंदिर और मूर्तियों का भी निर्माण हुआ, जिनका उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों में हुआ है। अनेक ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिनमें मंदिरों के लिए दिए गए विभिन्न प्रकार के दानों के संकेत हैं। सेनवंशी शासक अपने को परम वैष्णव करते थे। चंदेल शासक परिमर्दी के बटेश्वर अभिलेख में विष्णु मंदिर का उल्लेख मिलता है। खुजराहो के चंदेल शासक के संरक्षण में अनेक देव मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ, जिसमें विष्णु के भी अनेक मंदिर थे। विष्णु के कुछ मंदिर वहां आज भी हैं, जो समकालीन वैष्णव भावना की अभिव्यंजना करते हैं। खजुराहो अभिलेख में भी विष्णु मंदिर की स्थिति का प्रमाण मिलता है। चेदी शासक लक्ष्मण राज के मंत्री सोमेश्वर ने एक विष्णु मंदिर बनवाया था। परमार शासक भोजदेव के वेतन दान पत्र में गरुध्वज को फहराने का उल्लेख है, जो निश्चय ही विष्णु मंदिर पर रहा होगा। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल के काल में नारायण का मंदिर निर्मित हुआ। नारायण पाल के समय में एक अभिलेख में गरुध्वज का संकेत मिलता है। उड़ीसा में अनेक विष्णु मंदिरों का निर्माण हुआ। ऐसे मंदिरों का केंद्र भुवनेश्वर रहा था, जहां 12वीं सदी के अंत में अंततः वासुदेव का भी मंदिर बना। विष्णु के मंदिरों के अतिरिक्त इस काल में विष्णु की अनेक मूर्तियां भी गढ़ी गईं। शंख, चक्र, गदा और पद्म को अपने करों में धारण किए हुए भगवान विष्णु की मूर्तियां पारंपरिक आधार पर निर्मित हुआ करती थी। इस प्रकार की मूर्तियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से प्राप्त हुईं। इस युग में हरिहर का उल्लेख भी मिलता है, अर्थात वैष्णव और शैव नामक दो विरोधी संप्रदायों को एक साथ सहिष्णु भाव से दर्शित किया गया है। भगवान कृष्ण की अनेक मूर्तियां इस काल में निर्मित की गईं। विष्णु की मूर्ति के साथ लक्ष्मी और गरुण की मूर्तियां भी इस काल में निर्मित की गईं। विष्णु की मूर्ति के साथ लक्ष्मी और गरुण की मूर्तियां भी बनाई गई थी। परमर्दी के अभिलेखों में महालक्ष्मी उत्कीर्ण है, जिस पर जल चढ़ाते हुए एक हाथी का चित्रित किया गया है। गुप्त शासकों की मुद्राओं की तरह चेदी शासक, गंगेय देव, चंदेल शासक, कीर्ति बर्मन और कश्मीर के शासक दिद्दद्दा की मुद्राओं पर भी लक्ष्मी के चित्र अंकित हैं। विष्णु के विभिन्न अवतारों का संदर्भ पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है। वैसे इस युग के कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख करते हैं। क्षेमेंद्रकृत, दशाश्वचरित, जयदेव लिखित गीत गोविंद आदि प्रतिनिधि ग्रंथों में विष्णु के दशाश्वतार का वर्णन मिलता है। युवराज देव के बोधगढ़ अभिलेख में विष्णु के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है। नागपुर से प्राप्त परमार शासक के अभिलेख में विष्णु को मत्स्य जैसे अनेक रूपों में दर्शित किया गया है। विष्णु का 12 अवतार समाज में अधिक प्रचलित हुआ, जिसकी गुप्त काल में अनेकानेक मूर्तियां भी निर्मित होने लगी। 10वीं सदी के मेवाड़ के एक अभिलेख में 12 अवतार का उल्लेख है। यही नहीं, नरसिंह अवतार के भी अनेक अभिलेख मिलते हैं। राजपुताना से प्राप्त एक अभिलेख में नरसिंह अवतार का एक सुंदर चित्रण किया गया है। बंगाल से प्राप्त 4 हाथों वाली नरसिंह की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। विष्णु के 52 अवतार की मूर्तियां उत्तर भारत से प्रायः नहीं मिलती। बंगाल से प्राप्त अभिलेखों में 52 अवतार के उदाहरण मिलते हैं। यही नहीं, परशुराम की कुछ प्रतिमाएं बंगाल से प्राप्त हुई हैं। महाकवि जयदेव ने परशुराम को जगतपति और भृगुपति के रूप में उल्लेखित किया है। भोज के ग्वालियर अभिलेख में राम को विष्णु के अवतार के रूप में विवृत किया गया है। राम की कतिपय लीलाओं का चित्रण पहाड़पुर की कलाकृतियों में भी हुआ है। 11वीं सदी में अरब यात्री अलुबर्नी के थानेश्वर अर्थात हरियाणा के चग्र स्वामी का उल्लेख किया गया है। वह लिखता है, तानेसर नगर हिंदुओं द्वारा अत्यधिक आदृत है। उस स्थान की मूर्तियां चक्र स्वामी कहलाती हैं, अर्थात चक्र का स्वामी अर्थात कृष्ण। गुजरात में चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने दशावतार की मंदिर निर्मित कराया था, जो सहस्त्रलिंग झील के किनारे स्थित था। उसका एक मंत्री दधीपुर में गंगा नारायण के मंदिर का निर्माण कराया था। भीम द्वितीय के एक शासकीय अधिकारी ने केशव मंदिर बनवाया था पिहोवा अर्थात हरियाणा। अभिलेख में विष्णु गरुड़ासन के साथ उत्कीर्ण है। गढ़वाल ताम्रलेखों से विदित होता है कि काशी के वरुणा और गंगा तट पर आदि केशव मंदिर बना था। यह मंदिर आज भी वर्तमान है, जहां दर्शनार्थी जाया करते हैं। समाज में वैष्णव धर्म संबंधी अनेकानेक समारोहों और त्योहार भी प्रचलित हो गए थे। जिसका उल्लेख पुराण आदि विभिन्न कृतियों में हुआ है। इस संबंध में गुप्तकालीन अभिलेखीय प्रमाण भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उदयगिरी अभिलेख में शयन एकादशी का उल्लेख है, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती थी। इसी दिन हरि सो जाते थे और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जागते थे। जिस दिन वे जागते थे उसे देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। गंगाधर अभिलेख में कहा गया है कि यह दिन सभी के लिए प्रफुल्लता और उत्साह उल्लास लाता है। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मनाई जाती है। अलिवर्णी ने भी अनेकानेक वैष्णव त्योहारों का उल्लेख किया है, जिसमें देवशयनी एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, देवोत्थान एकादशी, रामनवमी आदि विशेष प्रसिद्ध थे, जिसका समकालीन भारतीय समाज में भी समर्थन होता था। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। तो यह विशाल विश्व का ऐश्वर्यशाली विष्णु का ही शक्तियों का अनेकानेक अभिव्यक्ति है। समस्त जगत उन्हीं की विलक्षण कृति है, उनमें अर्थात विष्णु अथवा हरि में और जगत में कोई भी भेद नहीं है। उनके अवतारों की इयता नहीं। जिस प्रकार न सूखने वाले सरोवर की सहस्त्र कुलाएं अर्थात छोटी धाराएं निहसृत होती हैं, उसी प्रकार उस तत्व निधि हरि के असंख्य अवतारों का उद्गमन होता है। यद्यपि अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है और न्यूनतम 10, तथापि हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार 10 अधिक प्रख्यात हैं। ये 10 अवतार हैं मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कलिक। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। विष्णु के अवतारों के विवरण में बलराम को गृहित कर 10 संख्या की पूर्ति की गई है। श्री कृष्ण विष्णु के रूप में हैं। युधिष्ठिर ने उनकी स्तुति करते हुए कहा है कि यह संपूर्ण जगत आपकी लीलामयी सृष्टि है। आप इस विश्व की आत्मा हैं। आप ही से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। व्यापक होने के कारण आप ही विष्णु हैं। विजयी होने के कारण जिष्णु, दुख और पाप हरने के कारण हरि, अपनी ओर आकृष्ट करने के कारण कृष्ण, विकुंठ धाम के अधिपति होने के कारण वैकुंठ, अक्षर अक्षर पुरुष से उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम। इस प्रकार विष्णु का आयाम अत्यंत विशाल है। वैदिक युगीन उनकी पराक्रमशीलता परवर्ती काल में आकर शक्ति संपन्न हुई। उनके व्यक्तित्व में अनेकानेक गुण समाहित हैं। उन्हें अत्यंत पराक्रमी, आनंद प्रदान करता, उपकार करने वाला, पतित पावन, विष्णु स्वरूप, देव मंदिर, गीतज्ञ, गीत प्रिय, विद्या और यज्ञ का आधार, सृष्टिकर्ता और तारक, व्यापक, परम पद, लोक भरण करता, सर्वभूतों में निवास करने वाला कहा गया है। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक स्थिति। वासुदेव और भागवत धर्म। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन से दर्शित होता है, जो संभवतः 6वीं सदी ईस्वी पूर्व से पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव, जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग से प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक कहे जाते थे, जो संभवतः वासुदेव कृष्ण को प्रधान देवता मानकर उनकी उपासना समाज में भक्त के नए आदर्श के रूप में प्रचलित हुई। मथुरा क्षेत्र में उनकी जाति का प्रभाव था। वे संभवतः क्षत्रिय नहीं थे। उनकी जाति को स्यात मथुरा से गुजरात की ओर जाना पड़ा। उस समय उत्तरी भारत विघटन और संघर्ष में पड़ा हुआ था। कृष्ण ने अपने मत का संचालन किया। पतंजलि ने भाष्य करते हुए लिखा है कि वासुदेव पूजारह अर्थात भगवान की संज्ञा हैं, जो दिव्य पुरुष हैं। वे शायद विष्णु वंशी रहे। पतंजलि के अनुसार वासुदेव विष्णु के रूप हैं। तत्कालीन समाज में कंस और वासुदेव संबंधी आख्यान प्रचलित हो चुके हैं। उस युग में कंस वध के चित्र बनाए जाते थे तथा वासुदेव का यशगान किया जाता था। वासुदेव के चतुर्व्यह उल्लेख भी पतंजलि द्वारा किया गया है। कृष्ण और संकर्षण की सम्मिलित सेना तथा उनके प्रसाद और मंदिरों का विवरण भी उनमें मिलता है। अतः पाणिनि के काल में वासुदेव का पूजन और भगवत धर्म का प्रचार तीव्र गति से हुआ था। गृहपत्नी और गृहपति जो भगवत धर्म का अनुसरण करते थे, भगवती और भागवत कहे जाते थे, वासुदेव के उपासकों के प्रारंभिक अभिलेख भी मिलते हैं। बेसनगर स्थित द्वितीय ईस्वी पूर्व के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यूनानी दूत तक्षशिला निवासी होलिओदोर ने देवाधिदेव वासुदेव के स्मरण में गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया था और अपने को साक्षात भगवान घोषित किया था। स्पष्ट है कि भगवत धर्म का समाज में इतना अधिक प्रभाव था कि कभी कभी विदेशी भी उनके अनुयायी बन जाते थे और आराध्य देव के सम्मान और स्मरण में अभिलेख उत्कीर्ण करवाते थे। पहली सदी ईस्वी पूर्व के नानाघाट अभिलेख में संकीर्ण वासुदेव, कृष्ण और भाई बलराम का उल्लेख हुआ है, जो तदयुगीन वासुदेव पूजन के प्रचलन और वासुदेव धर्म के प्रसार की पुष्टि करता है। महाभारत में वासुदेव का अनेक बार नाम लिया गया है। वासुदेव के संबंध में भीष्म का कहना है कि इस नित्य मंगलमय अद्भुत और अनुरागी देवता को वासुदेव के रूप में समझना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भक्ति सम्मिलित कार्यों से उनकी पूजा करते हैं। वृष्णि लोग वासुदेव के अनुयायी थे जो कालांतर में सात्वत भी कहलाए। भगवान वासुदेव ने स्वयं कहा है, मैं विष्णुओं का वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास और कवियों में उसना। सात्वक लोग वासुदेव को परम ब्रह्मा के रूप में मानकर विशिष्ट साधना द्वारा पूजते थे। भगवत पुराण में उल्लेखित है कि सभी जीवों में स्थित भगवान को अपने हृदय में दर्शित करना चाहिए, सबके साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही सच्चा भक्त है। इस प्रकार के व्यक्ति में आदर्श भावना, श्रद्धा, विनय, दोष दृष्टि का अभाव, मित्रता भाव, शांत विचार, सत्यता और शुद्धता होती है। संपत्ति और विपत्ति को सामना मिलता है तथा उत्तम, माध्यम और अधम को समभाव से समझता है। ऐसा भागवत अनुयायी काम और अर्थ से बहुत दूर रहता है। वह मन में ऐसी प्रवृत्ति नहीं लाता। इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति का पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है और मन, प्राण, इंद्रियां, शरीर, धर्म, बुद्धि, श्री, तेज, स्मृति, सत्य आदि भी लुप्त हो जाते हैं। वह लोकोपकारी तथा निष्प्रिय मार्ग का अनुसरण करता है। विष्णु पुराण के अनुसार सात्वत अंश का पुत्र था और कालांतर में उसके नाम से उसका वंश चला और उस वंश में होने वाले लोग भगवान वासुदेव के अनुयायी हुए। अतः वासुदेव को सात्वत सर्व भी कहा गया। यह भी संभव हो सकता है कि सात्वत जाति के लोग भगवत संप्रदाय का विकास हुआ जो वासुदेव को परमेश्वर के रूप में मानता था और सविधि पूजन अर्चन करता था। वासुदेव पूजन मौर्य युग में भी प्रचलित था। मेगस्तनीज नामक यूनानी दूत ने मथुरा में सरसिनोई नामक जाति और जुबारेस नामक नदी का उल्लेख किया है जो क्रमशः सुरसेन और यमुना शब्दों को व्यंजित करते हैं। ऐसा लगता है कि भगवत धर्म का उदय मौर्य युग के उदय से बहुत पहले हो चुका था, जो संभवतः बौद्ध युग के पूर्व का समय था। उसके बाद से भगवत धर्म समाज और सक्रियता पूर्वक स्थान बनाने लगा। महाभारत की रचना के समय भगवत धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया था। परमेश्वर ने वासुदेव के इस रूप में इस भूतल पर अवतार लेकर लोगों को नवीन आस्था और विश्वास प्रदान किया तथा कहा, बुद्धिमान मनुष्य, जन्मों के अंत में यह मानते हुए कि वासुदेव ही सब कुछ है, स्वयं को मुझ में अर्पित करता हुआ मुझे भजता है, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। अतः वासुदेव भगवत संप्रदाय के सर्वोच्च आराध्य शिव थे, जिनका पूजन परमेश्वर रूप में उनके अनुयायियों द्वारा अत्यंत निष्ठापूर्वक किया जाता था। परवर्ती काल में वासुदेव शब्द उनके पिता के लिए व्यवहारित किया जाने लगा। विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु के नाम से स्वीकार किया गया है तथा यह भी कहा गया है कि विष्णु सर्वत्र हैं, जिसमें सभी का वास है, इसलिए वह वासुदेव हैं। एक अन्य स्थान पर वासुदेव के लिए यह विवृत है कि संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत भविष्य और वर्तमानकालीन संपूर्ण देवों असुरों और मुनिजनों की वृद्धि के लिए अगम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार ग्रहण करने के लिए प्रसन्न किए गए तथा आदि मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया। उन्हीं की कृपा से महिमावली योग निद्रा भी नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। वायु पुराण में भगवान वासुदेव के पिता वासुदेव का उल्लेख है, जिनके अनुसार वासुदेव की तपस्या के परिणाम स्वरूप देवकी के गर्भ में चतुर्बाहु वाले दिव्य रूपी भगवान ने जन्म लिया। वासुदेव और नारायण। वासुदेव के लिए नारायण का भी उल्लेख मिलता है। नारायण की नाडायन शब्द से अभिव्यंजना की गई है। उसका अर्थ नर या नरों का समूह के रूप में गर्भित किया गया है। नर शब्द का व्यवहार वैदिक देवों के लिए भी हुआ है, इसलिए नारायण शब्द देवों का आश्रय अर्थ अभिव्यक्त करता है। महाभारत के शांति पर्व में नारायणी खंड की कथा नारायण से संबद्ध है। नारद को परम पुरुष वासुदेव ने वासुदेव धर्म की दीक्षा दी थी, इसलिए पहले वह नारायण की आराधना करते थे और तब पितरों की। नारायण ही उनके माता पिता और पितामह थे। आख्यानों में नारायण को जल सया में शेष सया पर दर्शित किया गया है, जो नारायण के दूसरे अभिप्रायों का सार्थक करता है। मनु के अनुसार नर का अर्थ जल भी होता है। जो नर की संतान है वह नारा परमात्मा का प्रथम आश्रय है, इसलिए परमात्मा नारायण कहे जाते हैं। पुराणों में नारायण के विषय में विस्तृत सूचनाएं मिलती हैं, जिनके अनुसार नारायण परम पुरुष परमात्मा है। विष्णु पुराण में लिखा गया है कि नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नारा कहते हैं। वह नारा ही उनका प्रथम अयन अर्थात आवास है, इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। मत्स्य वायु। ब्राह्मण पुराणों में नारायण को विष्णु का स्वरूप माना गया है। वैदिक युगीन अनेक ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिसके अनुसार नारायण के मूल आधार का भान होता है। ऋग्वेद में उल्लेखित है कि स्वयंभू नारायण ने समस्त जीवों को धारण किया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार नारायण में ही सभी लोक देव वेद और प्राण प्रतिष्ठित हैं। महाभारत में एक स्थल पर कहा गया है कि जब सातवें कल्प के आरंभ में सातवीं बार ब्रह्मा जी के जन्म ग्रहण का अवसर आया, तब शुभ और अशुभ से अमित तेजस्वी महायोगी भगवान नारायण ने सबसे पहले नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक ऋषि का नाम नारायण वर्णित किया गया है, जो संभवतः परवर्ती काल में आकर वासुदेव अथवा विष्णु से संबंधित किया गया। तैत्तिरीय आरण्यक के विवरण में नारायण को उन समस्त विशेषताओं से युक्त किया गया है जो उपनिषदों में विवृत है। पौराणिक कथाओं में भगवान नारायण को क्षीर सागर में शेष नाग की सया पर सोए हुए प्रदर्शित किया गया है। अतः नारायण का जल में स्थान जल से संबंध स्थापना का आख्यान पुराकालीन है। परम पुरुष परमात्मा के रूप में नारायण की प्रतिष्ठा वासुदेव के पहले ऋग्वेद काल में हो चुकी है। महाकाव्य युग में वासुदेव का गौरव बढ़ा और नारायण के साथ वासुदेव का समन्वय किया गया। उस संबंध का सुंदर और सरल वर्णन महाभारत के वन पर्व में हुआ है, जिसका आख्यान मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को सुनाते हैं। सृष्टि के प्रलय काल में सर्वत्र जल ही जल व्याप्त था, वही मार्कंडेय मुनि भी आ गए थे। उस शिशु ने जब अपना मुख खोला तब मार्कंडेय उनके मुख में चले गए, जहां उन्होंने अत्यंत आश्चर्य के साथ संपूर्ण सृष्टि को देखा। इसके बाद उस शिशु ने मार्कंडेय ऋषि को मुख से उगल दिया और फिर वे जमीन पर आ गए। इस पर मार्कंडेय ने उस शिशु से पृच्छ की, आप कौन हैं? तब उसे उत्तर दिया, मैं जल को नारा की संज्ञा दी है जो मेरा अयन है, इसलिए मैं नारायण हूँ। तदांतर मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर से कहा, आपके संबंधी जनार्दन ही नारायण हैं। महाभारत के नारायणीय खंड में भी वासुदेव के नारायणीय स्वरूप की चर्चा की गई है। एक अन्य कथा में कहा गया है कि नारायण चार मूर्तियों नर, नारायण, हरि और कृष्ण के रूप में धर्म के आत्मज हैं, जो कालांतर में आकर सत्य, अहिंसा, परम ब्रह्मा आदि तत्वों से संबद्ध होकर समाज के धार्मिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग बन गए। अर्जुन और कृष्ण को महाभारत में नर और नारायण का रूप माना गया है, जो विभिन्न स्थलों पर दृष्टिगत होता है। नर और नारायण के तादात्म्य का यहाँ एक ही दृष्टांत पर्याप्त होगा। जनार्दन अर्जुन से कहते हैं, हे अजय, तू नर है, मैं नारायण, हम दोनों इस भूतल पर समयानुसार अवतरित हुए हैं। हे पार्थ, न तुम मुझसे पृथक हो और न मैं तुमसे, हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। अतः ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नारायण और वासुदेव एक ही परम पुरुष के पर्यायवाची नाम थे। नारायण नाम सबसे पहले प्रचलित हुआ था और बाद में वासुदेव। स्मृतियों में भी नारायण की जगतपति के रूप में वंदना की गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि नारायण का पूजन समाज में त्वरित गति से बढ़ रहा था और उनके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। वासुदेव और विष्णु देवताओं के रूप में, विष्णु का अस्तित्व वैदिक युगीन है। ऋग्वेद में उनकी स्तुति अनेक सूक्तों में की गई है। उनके विक्रम, पराक्रम और यश के समस्त जगत समाविष्ट था, इसलिए वे विश्व में व्यापनशील थे। उनकी वंदना में कहा गया है कि उन्होंने अपने तीन ही पद में समस्त लोगों को माप लिया था। उनके दो पद तो दृश्य थे, किंतु तीसरा पद पूर्णतया अदृश्य, पक्षियों की उड़ान से भी परे स्वर्ग में अनिमेष देखते हुए उनके परम आनंद का दर्शन किया जा सकता था। मधु के उत्स के समान उनके परम पद थे, जहां देवगण आनंद लाभ करते थे। उत्तर वैदिक काल के तात्कालीन समाज में विष्णु का प्रभाव और आयाम बढ़ने लगा, जो महाकाव्य में आकर और अधिक बढ़ गया, जिससे उन्हें सृष्टिकर्ता और जग नियंता का पद प्रदान किया। ब्राह्मण ग्रंथ में विष्णु को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के एक उपाख्यान में ज्ञात होता है कि देवताओं ने आपस में यह निश्चय किया कि जो देवता अपने कर्म से अंत का पता पा लेगा, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। देवताओं में विष्णु ने सर्वप्रथम अंत का पता प्राप्त कर लिया, फलस्वरूप वही देवताओं के सर्वोच्च पद के अधिकारी हुए, तथा तीन पदों के कारण प्राप्त विजय से देवताओं ने उन्हें अपरिमेय अधिकार से संपन्न किया। देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष में विष्णु वामन अवतार के रूप में जब भूमि पर लेट गए, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने शरीर का आकार बढ़ाना प्रारंभ किया और अंत में उन्होंने अपने आकार से संपूर्ण पृथ्वी को ग्रस्त कर लिया। फलतः विष्णु की अद्भुत शक्ति के कारण देवताओं को संपूर्ण पृथ्वी प्राप्त हो गई। इस प्रकार तात्कालीन समाज में विष्णु की बुद्धि और शक्ति सर्वाधिक प्रभावकारी और महत्वशाली सिद्ध हुई। उपनिषदों से भी विष्णु को परम ब्रह्मा के रूप में स्वीकार करके परम ब्रह्मा की प्राप्ति की बात कही गई है। संसार की निर्भरता अन्न के ऊपर थी, इसलिए उसे विष्णु का रूप माना गया था। सूत्र ग्रंथों के अनुसार जब स्त्री पुरुष का विवाह संपन्न होता था, तब उस संस्कार में सप्तपदी के समय कहा जाता था कि विष्णु तुम्हारे साथ रहें। इसलिए यह लक्षित होता है कि विष्णु जैसे देवता की कृपा और अनुकंपा की सभी कामना करते थे। महाकाव्यों के समय तक विष्णु परम ब्रह्मा परमेश्वर का पद प्राप्त कर सर्वोच्च हो चुके थे, तथा वासुदेव से उनका तादात्म्य भी स्थापित किया जा चुका था। महाभारत के अनेक स्थलों पर नारायण और विष्णु को परमेश्वर माना गया है तथा विष्णु को भगवान के रूप में वर्णित किया गया है। युधिष्ठिर ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, उन्हें विष्णु भी कहा है। पुराणों में भी वासुदेव का तादात्म्य विष्णु से किया गया है। विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु नामक नामधारी वर्णित किया गया है। उनका विष्णु नाम इसलिए था कि समस्त जगत उन्हीं की शक्ति से व्याप्त था। पुराणों में कहा गया है कि उन्होंने अपने तीन पदों से लोकों को विजित करके इंद्र को प्रदान कर दिया। विष्णु का यह तृतीय पद भास्वर था। सप्तऋषि मंडल के ऊपर ध्रुव तक विष्णु पद था। वहां तक पहुंचने वाले को कोई चिंता नहीं होती। लोक साधक तपस्वी ध्रुव आदि ने विष्णु पर पद प्राप्त करके ही अचलता प्राप्त की थी। वासुदेव का गोविंद, गोपाल और कृष्ण से एकीकरण। वासुदेव भगवान के लिए गोविंद नाम महाभारत में अनेक स्थानों पर आया है। भगवत गीता के अनेक श्लोकों में भगवान के लिए गोविंद का उल्लेख हुआ है। उनका गोविंद नाम इसलिए था कि उन्होंने पृथ्वी को जल में पाया था। महाभारत में एक स्थल पर भगवान वासुदेव स्वयं कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में नष्ट होकर रसताल में गई हुई पृथ्वी को पुनः वारह रूप में धारण करके प्राप्त किया, इसलिए देवताओं ने गोविंद नाम से मेरी स्तुति की। गा विदिंदित, एक बार और सुने, गाम विदिंदिता इति गोविंदा, अर्थात जो पृथ्वी को प्राप्त करे उसका नाम गोविंद है। गोविंद शब्द ऋग वेद में गायों को पालने वाले के अर्थ में इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ, जो कालांतर में वासुदेव कृष्ण के लिए व्यवहारित होने लगा। गोपाल शब्द भी इसी अर्थ में प्रचलित था, जो बाद में वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची बन गया। कृष्ण ने जब इंद्र पूजन के स्थान पर गोवर्धन पर्वत पूजन का प्रारंभ किया तो तब उन्हें कहा गया है कि हम गोपालक हैं, वन में घूमते हुए गायों पर अपना पोषण करते हैं। गौ, पर्वत और वन हमारे देव हैं। गोपालक घोषों में निवास करते हैं, इसलिए वे कभी भी सफलतापूर्वक बस सकते थे। अतः वज्र का परित्याग करके वे वृंदावन में बस गए। कालांतर में गोपालकों के लिए आभीर अर्थात आधुनिक अहिर शब्द का भी प्रचलित हो गया। भारतीय इतिहास और साहित्य में आभीरों का समुचित वर्णन मिलता है। वासुदेव के लिए कृष्ण का भी व्यवहार हुआ। महाभारत ने स्वयं भगवान ने कहा है कि पृथापुत्र अर्जुन, मैं काले लोहे के समान विशाल फाल बनाकर इस पृथ्वी को जोतता हूँ तथा मेरे शरीर का रंग भी काला है, इसलिए मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण नाम की दूसरी व्युत्पत्ति भी है, जिसके अनुसार कृष्ण का अर्थ है सत और ण का अर्थ है आनंद। अतः कृष्ण सच्चिदानंद है। पुराणों में कृष्ण के अवतार की कथा संग्रहित है, जो उनका वासुदेव से तादात्म्य स्थापित करती है। वायु पुराण में भगवान के लिए वासुदेव, गोविंद कृष्ण आदि समानार्थक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सुदर्शन के रूप में भी वे दर्शनीय थे। पांच रात्र मत अथवा भगवत धर्म का तत्व ज्ञान। पांच रात्र मत का विकास तीसरी सदी ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ था, जो वैष्णव धर्म का प्रधान मत था। इस मत के अंतर्गत वासुदेव और उसके स्वरूपों का पूजन आराधना सन्निहित है। इस सिद्धांत के अनुसार सकल विश्व का बीज पौरुषी रात्रि के रूप में भगवान वासुदेव में समाहित है। उनकी शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और भूति शक्ति, जो मन, प्राण और भौतिक प्राकृति की क्षमताओं के रूप में है, जागृत हुई। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज उनके छह गुण हैं, जिनमें ज्ञान और बल, ऐश्वर्य और वीर्य तथा शक्ति और तेज तीनों युगल हैं। ये युगल व्यूह के नाम से ज्ञात हैं। ये तीनों व्यूह संकर्पण कृष्ण के भाई बलराम, प्रद्युम्न उनका पुत्र और अनिरुद्ध उसका पौत्र, इन तीनों व्यूहों के ऊपर वासुदेव व्यूह है। इस चक्र व्यूहों में 16 उपव्यूहों का उदय हुआ, जिसमें 4 विज्ञानेश्वर, निःसृत हुए। इन सबको मिलाकर वासुदेव की 24 मूर्तियां हो गई। तदांतर भगवान ने अपने को प्रकृति के विभिन्न रूपों में प्रकट किया है, जिन्हें विभव भी कहा गया है और अवतार भी। भगवत पुराण के अनुसार ये असंख्य हैं। विश्वक्सेन संहिता तो आम के पेड़ को भी उनका अवतार मानती है। पंचरात्रा शब्द की व्युत्पत्ति प्राचीन काल में हुई। नारद के अनुसार इसमें परम तत्व मुक्ति, युक्ति, योग और विषम विषय जैसे 5 पदार्थ हैं, इसलिए यह पंचरात्रा कहा गया। इसका नियमन स्वयं नारायण ने समग्र पापियों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करके किया था। इसका आचार पक्ष वैदिक सिद्धांत पर आश्रित है। पंचरात्रा एकयान मोक्ष प्राप्ति विद्या का भी सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। भगवत मत और सिद्धांत को व्यंजित करने वाला प्रधान ग्रंथ पंचरात्रा संहिताएं हैं। पुरस्कार और संहिता जैसी कुछ पंचरात्रा संहिताओं का सन्निवेश रामानुजम के ब्रह्मसूत्र पर महाभाष्य लिखते हुए किया गया है। पुरस्कार संहिता का मुख्य वर्ण यह है कि ब्राह्मण लोक चतुर्विधि आत्मा का आराधना पारंपरिक नामों द्वारा करते हैं। सात्वत संहिता में वर्णित है कि वासुदेव नाम लेने वाले ब्रह्मा की उपासना से ब्राह्मणों को विवेक आता है। परम संहिता में उल्लेखित है कि प्राकृति का स्वरूप जड़, परोपभोगार्थ, नित्य, सदा, परिणामणी और त्रिगुणाक्ति से स्थिर होता है, जिसके माध्यम से कर्ताओं के कर्म निर्धारित होते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने सात्वक संहिता का लंबा उदाहरण देते हुए पंचरात्र का मत विश्लेषण किया है। नित्य और परम ब्रह्मा की उपासना से ही मुक्ति संभव है। सगुण या संपन्न परमेश्वर के कर, चरण और चक्षु सर्वत्र हैं। वह सबके परे हैं। सर्वाभूताश्रय होकर भी वह एक हैं। उस परमेश्वर के अलग एक रिक है, जो ज्ञान और गुणों के कारण एक दूसरे से पृथक है। ये तीनों व्यूह समान हैं, जो उपेक्षित फल प्रदान करते हैं। परमात्मा जगत के मंगल के निमित्त 4 रूपों की सृष्टि करते हैं, व्यूह, विभव, अवतार और अंतर्मयी। गुणों के आधार पर तीनों व्यूहों की सृष्टि होती है। संकर्षण अर्थात ज्ञान और बल, प्रद्युम्न अर्थात ऐश्वर्य और वीर्य, अनिरुद्ध शक्ति और तेज। इनके कार्य अलग अलग हैं। संकर्षण का कार्य जगत की सृष्टि और एकांतित अर्थात एकांतित मार्ग का उपदेश। प्रद्युम्न का कार्य है तन्मा मार्ग सम्मत क्रिया का निर्देश, तथा अनिरुद्ध का कार्य है क्रियाफल अर्थात मोक्ष तत्व। वासुदेव के उपासक ब्राह्मणों के हृदय में ब्रह्मा होता है, जो सृष्टि का लक्ष्य और अंत है। जगत के उद्धार के लिए ब्रह्मा से महोपनिषद अर्थात सर्वोच्च ज्ञान तत्व उत्पन्न होता है, जो दैवी तत्व से मुक्त युक्त होकर साधक को विवेक का भान कराता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। अष्टांगिक योग का अभ्यास करने वाले को जिसकी आत्मा चिंतन में लगी रहती है, यह तत्व ज्ञान फल प्रदान कराता है। हृदय में स्थित परमात्मा का मानस, वाच और कर्मणा स्मरण करने वाला विदेग्य ही वास्तविक योगी है। ब्रह्म सूत्र के अनुसार भगवत धर्म में पूजा की 5 विधियां हैं। 1 अभिगमन, 2 अभिगमन मन, वचन और काया से भगवान के प्रति पूर्ण रूप में उत्सर्जित होकर देव मंदिर में जाना। 2 उपादान, विभिन्न पूजा सामग्री एकत्रित करना। 3 इज्या, पूजा करना। 4 स्वाध्याय, भगवान के मंत्र का जाप करना। 5 योग, समाधि। नारद पंचरात्रा नामक ग्रंथ में ज्ञान मृत सार संज्ञक संहिता है, जिसमें बालकृष्ण भगवान के यश का वर्णन है और भक्ति की अपूर्व प्रशंसा की गई है। भगवान हरि की भक्ति दास्य भाव से करना उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। उसमें भक्ति के छह प्रकार बताए गए हैं, एक स्मरण, दो नाम महिमा यश का कीर्तन, तीन प्रणमन, चार चरणों का सेवन, पांच भक्ति के साथ पूजन में निरंतर लगा रहना, और छह भगवान हरि के सम्मुख आत्मनिवेदन करना। किंतु भगवत पुराणों में भक्ति के तीन प्रकार निर्दिष्ट किए गए हैं, श्रवण अर्थात भगवान की महिमा का वर्णन सुनना, दास्य भगवान का दास रूप में पूजन करना, तीन सख्य सखा भाव से भगवान के प्रति उत्सर्जित होना। पदम्य तंत्र में कुछ भेद विवृत किए गए हैं, यथा भागवत सात्वत पांच कालिवित एकांकित तन्मय और पांच रात्रिक। पांच रात्रिकों और भगवतों में प्रधान भेद यह है कि पांच रात्रिक भगवान नारायण की आराधना करते थे और भागवत वार्ष्णेय अर्थात भगवान विष्णु के। वैष्णव धर्म का उत्कर्ष काल व ऐतिहासिक सर्वेक्षण। गुप्त काल में वैष्णव धर्म अथवा भगवत धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था। तत्कालीन युग में विष्णु या नारायण अथवा नर नारायण की पूजन और मूर्ति निर्माण बहुत अधिक प्रचलित था। स्थापत्य और साहित्य दोनों में विष्णु के विभिन्न रूपों का चित्रांकन हुआ है। उस साहित्य में अधिकांश शासक वैष्णव थे, इसलिए वैष्णव स्थापत्य और साहित्य की अधिकाधिक विकास होना स्वाभाविक था। कालिदास ने नारायण और विष्णु को समान माना है, अर्थात नारायण को नर का मित्र, जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया जा चुका है कि अर्जुन नर थे और भगवान कृष्ण नारायण। कालिदास के अनुसार भगवान विष्णु सागर तल पर सहस्त्र फरोणों वाले शेषनाग की सैया पर विश्राम करते थे और उनके फैले हुए चरण उनके पाद प्रदेश में बैठी हुई लक्ष्मी की गोद में शोभायमान थे। उनकी चार भुजाएं हैं जिनमें क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हैं। उनके वक्ष पर कौतुभ नामक मणि शोभायमान है तथा निकट ही उनका वाहन गरुड़ सेवा के लिए खड़ा है। कालांतर में इसी वर्णन के अनुरूप शेष साई विष्णु की अनेक मूर्तियां गढ़ी गईं। स्पष्ट है कि उनकी महिमा वाणी और मन दोनों से परे है। आराधना और स्तुति में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों के कार्य उनमें समाविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आरंभ में वे ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, मध्य में उनका धारण करते हैं और अंत में उसका विनाश करते हैं। गुप्त सम्राटों की मुद्राओं पर उनकी उपाधि परम भागवत उत्कीर्ण है, जो उनके वासुदेव उपासक और वैष्णव धर्मावलंबी होने का प्रबल प्रमाण है। चंद्रगुप्त द्वितीय कुमारगुप्त स्कंदगुप्त जैसे शासक भागवत धर्म के अनुयायी थे। उनकी मृदाओं और तात्कालीन अभिलेखों से वैष्णव धर्म संबंधी अनेक संकेत प्राप्त होते हैं। गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन के नाम से अभिहित किया गया है। उड़ीसा स्थित उदयगिरी में चतुर्भुज विष्णु की एक प्रतिमा जो 400 ईस्वी की है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अंतर्गत भीतरी में स्कंदगुप्त का एक स्तंभलेख विष्णु कृष्ण की मूर्ति का उल्लेख करता है, जिसके पूजन आदि के लिए ग्राम दान किया गया था। कुमारगुप्त के गढ़वा अभिलेख में विष्णु को भगवत कहा गया है। स्कंदगुप्त कालीन जूनागढ़ का अभिलेख 456 ईस्वी विष्णु के मंदिर के निर्माण का वर्णन करता है तथा वामन रूपीधारी विष्णु द्वारा बलि से लक्ष्मी को छल से हर लेने की बात उल्लेखित करता है। मध्य प्रदेश स्थित सागर में के एरण नामक स्थान पर बुद्धगुप्त कालीन अभिलेख 483 ईस्वी से विदित होता है कि भगवान जनार्दन अर्थात वासुदेव के स्मरण और सम्मान में ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया था। महरौली के लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि चंद्र नामक सम्राट ने विष्णु ध्वज का निर्माण करवाया था। अपसद अभिलेख में वासुदेव पुत्र माधव के चरणों की लक्ष्मी द्वारा सेवा की बात उल्लेखित है। बुद्धगुप्त के दामोदर के अभिलेख में वर्णित है कि कौशिकी और कोका नदियों के संगम पर वारह क्षेत्र में हिमालय के शिखर पर वारह स्वामी और कोका मुखी स्वामी के मंदिर का निर्माण हुआ था। प्रायः उसी युग में उस क्षेत्र में दामोदरपुर, इसका वर्तमान नाम दिनाजपुर बंगाल के निकट इन्हीं दो देवताओं के निमित्त मंदिर का निर्माण हुआ है। हूर शासक तोरामण की के इरण से प्राप्त 12 मूर्ति और उसके अभिलेख 12 रूप नारायण के मंदिर निर्माण का संदर्भ मिलता है। कदम्ब राजकुल के तगारे के अभिलेख में 12 अवतार का उल्लेख है। पूर्वी चालुक्यों का राज चिन्ह ही गरुड़ था, जो उनके वैष्णव होने का प्रबल प्रमाण था। उनके अधिकांश अभिलेखों का प्रारंभ 12 की वंदना से होता है। 12 अवतार की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति उदयगिरी गुहा की दीवार पर एक विशालकाय रूप में उभारी गई, जिसमें पृथ्वी की रक्षा करते हुए 12 रूपी भगवान को चित्रित किया गया है, जिसके दांत से अति लघुकाय नारी मूर्ति पृथ्वी पर लटकी हुई है। ऐसा 12 रूपधारी भगवान का उल्लेख कालिदास ने भी किया है। उनके ग्रंथों में मोरपंखीधारी कृष्ण का भी उल्लेख है। उनके भाई बलराम और उनकी पत्नी रुक्मणी की भी काफी संकेत है। गुप्तकालीन अनेक पुराणों में विष्णु के समस्त अवतारों का विशद विवरण मिलता है। मत्स्य, कच्छप, 12, नृसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्धि, बुद्ध और कल्कि नामक 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। दक्षिण के चालुक्य वंशी शासक मंगलेश के आदेश से पर्वत पर कटे गुफा मंदिर में विष्णु और नारायण तथा 12 और नरसिंह की प्रतिमाएं गढ़ी गई थी। विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी उनकी चरणों को दबा रही हैं। एलोरा के दशावतार की विशाल विष्णु मूर्तियां तात्कालीन वैष्णव धर्म के प्रसार की उत्कृष्ट प्रतीक हैं। शेषशायी विष्णु की चरण दबाती हुई लक्ष्मी को दर्शित किया गया है तथा भगवान की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा विराज रहे हैं। नरसिंह, वामन, 12 और गोवर्धन धारी कृष्ण की भी आकर्षक और अविराम मूर्तियां हैं। 12 मिहार में बिहार ने 12 मिहिर ने अपने वृह संहिता नामक ग्रंथ में विष्णु और भगवत की चर्चा की है। भगवत सब तत्कालीन भगवत संप्रदाय की ओर इंगित करता है, साथ ही विष्णु के भक्तों को भी व्यंजित करता है। अमर सिंह ने अपने कोश ग्रंथ अमर कोश में विष्णु को 29 विभिन्न नामों की चर्चा करते हुए वासुदेव को उनका पिता माना है। हर्ष के युग में भी वैष्णव धर्म की गति निरंतर प्रवाहमान थी। बाण ने हर्ष चरित में पांचरात्रिक और भगवत संप्रदाय का उल्लेख किया है, जिनके अनुयायी दिवाकर मित्र के आश्रम में रहते थे। भगवत लोग वासुदेव विष्णु की उपासना करते तथा अवतारवाद के सिद्धांत को मानते थे। अस्मार्थ वैष्णव ब्रज के अधिपति, गायों को चराने वाले तथा गोपियों के प्रिय श्री कृष्ण की आराधना करते थे। कादंबरी में अनेक स्थलों पर कृष्ण के आख्यानों का उल्लेख है। हर्ष के समकालीन प्राग्ञ ज्योतिषपुर अर्थात आसाम के शासक भास्कर वर्मा के कुटुंब के लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म का प्रसार राजपूत युग में भी तद्वत था। अनेकानेक अभिलेख, मंदिर और मूर्तियां इस कथन के प्रमाण हैं। लखीमपुर खीरी दानपत्र से विदित होता है कि विष्णु का पूजन ओम नमो नारायण के नाम से किया जाता था। कभी कभी ओम नमो भगवते वासुदेव इसको एक बार और सुने, कभी कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कहा जाता था। पहाड़पुर की कलाकृतियों में गोवर्धनधारी कृष्ण की भी आकृति है। जयदेव ने राधा कृष्ण संप्रदाय का उल्लेख किया है। प्रतिहार शासक भोज के अभिलेख में विष्णु को निर्गुण और सगुण का प्रतीक मानते हुए ऋषिकेश के रूप में वर्णित किया है। पूर्व मध्य युग में भी विष्णु अपने सहनामों के समाज में पूजित और आदृत थे, जिनमें वासुदेव नारायण, कृष्ण मुरारी आदि, केशव, हरि, माधव आदि नाम अधिकाधिक प्रचलित थे। उपासकों द्वारा अत्यंत मनोनिवेशक पूर्वक उनकी स्तुति की जाती थी। इस युग में अनेक विष्णु मंदिर और मूर्तियों का भी निर्माण हुआ, जिनका उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों में हुआ है। अनेक ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिनमें मंदिरों के लिए दिए गए विभिन्न प्रकार के दानों के संकेत हैं। सेनवंशी शासक अपने को परम वैष्णव करते थे। चंदेल शासक परिमर्दी के बटेश्वर अभिलेख में विष्णु मंदिर का उल्लेख मिलता है। खुजराहो के चंदेल शासक के संरक्षण में अनेक देव मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ, जिसमें विष्णु के भी अनेक मंदिर थे। विष्णु के कुछ मंदिर वहां आज भी हैं, जो समकालीन वैष्णव भावना की अभिव्यंजना करते हैं। खजुराहो अभिलेख में भी विष्णु मंदिर की स्थिति का प्रमाण मिलता है। चेदी शासक लक्ष्मण राज के मंत्री सोमेश्वर ने एक विष्णु मंदिर बनवाया था। परमार शासक भोजदेव के वेतम दान पत्र में गरुड़ध्वज को फहराने का उल्लेख है, जो निश्चय ही विष्णु मंदिर पर रहा होगा। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल के काल में नारायण का मंदिर निर्मित हुआ। नारायण पाल के समय में एक अभिलेख में गरुड़ध्वज का संकेत मिलता है। उड़ीसा में अनेक विष्णु मंदिरों का निर्माण हुआ। ऐसे मंदिरों का केंद्र भुवनेश्वर रहा था, जहां 12वीं सदी के अंत में अंततः वासुदेव का भी मंदिर बना। विष्णु के मंदिरों के अतिरिक्त इस काल में विष्णु की अनेक मूर्तियां भी गढ़ी गईं। शंख, चक्र, गदा और पद्म को अपने करों में धारण किए हुए भगवान विष्णु की मूर्तियां पारंपरिक आधार पर निर्मित हुआ करती थी। इस प्रकार की मूर्तियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से प्राप्त हुई। इस युग में हरिहर का उल्लेख भी मिलता है, अर्थात वैष्णव और शैव नामक दो विरोधी संप्रदायों को एक साथ सहिष्णु भाव से दर्शित किया गया है। भगवान कृष्ण की अनेक मूर्तियां इस काल में निर्मित की गई। विष्णु की मूर्ति के साथ लक्ष्मी और गरुड़ की मूर्तियां भी इस काल में निर्मित की गई। विष्णु की मूर्ति के साथ लक्ष्मी और गरुड़ की मूर्तियां भी बनाई गई थी। परमर्दी के अभिलेखों में महालक्ष्मी उत्कीर्ण है, जिस पर जल चढ़ाते हुए एक हाथी का चित्रित किया गया है। गुप्त शासकों की मुद्राओं की तरह चेदी शासक, गंगेय देव, चंदेल शासक, कीर्ति बर्मन और कश्मीर के शासक दिद्दद्दा की मुद्राओं पर भी लक्ष्मी के चित्र अंकित हैं। विष्णु के विभिन्न अवतारों का संदर्भ पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है। वैसे इस युग के कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख करते हैं। क्षेमेंद्र कृत, दशाश्वचरित, जयदेव लिखित गीत गोविंद आदि प्रतिनिधि ग्रंथों में विष्णु के दशाश्वतार का वर्णन मिलता है। युवराज देव के बोधगढ़ अभिलेख में विष्णु के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है। नागपुर से प्राप्त परमार शासक के अभिलेख में विष्णु को मत्स्य जैसे अनेक रूपों में दर्शित किया गया है। विष्णु का 12 अवतार समाज में अधिक प्रचलित हुआ, जिसकी गुप्त काल में अनेकानेक मूर्तियां भी निर्मित होने लगी। 10वीं सदी के मेवाड़ के एक अभिलेख में 12 अवतार का उल्लेख है। यही नहीं, नरसिंह अवतार के भी अनेक अभिलेख मिलते हैं। राजपुताना से प्राप्त एक अभिलेख में नरसिंह अवतार का एक सुंदर चित्रण किया गया है। बंगाल से प्राप्त 4 हाथों वाली नरसिंह की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। विष्णु के 52 अवतार की मूर्तियां उत्तर भारत से प्रायः नहीं मिलती। बंगाल से प्राप्त अभिलेखों में 52 अवतार के उदाहरण मिलते हैं। यही नहीं, परशुराम की कुछ प्रतिमाएं बंगाल से प्राप्त हुई हैं। महाकवि जयदेव ने परशुराम को जगतपति और भृगुपति के रूप में उल्लेखित किया है। भोज के ग्वालियर अभिलेख में राम को विष्णु के अवतार के रूप में विवृत किया गया है। राम की कतिपय लीलाओं का चित्रण पहाड़पुर की कलाकृतियों में भी हुआ है। 11वीं सदी में अरब यात्री अलुबर्नी के थानेश्वर अर्थात हरियाणा के चग्र स्वामी का उल्लेख किया गया है। वह लिखता है, तानेसर नगर हिंदुओं द्वारा अत्यधिक आदृत है। उस स्थान की मूर्तियां चक्र स्वामी कहलाती हैं, अर्थात चक्र का स्वामी अर्थात कृष्ण। गुजरात में चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने दशावतार की मंदिर निर्मित कराया था, जो सहस्त्रलिंग झील के किनारे स्थित था। उसका एक मंत्री दधीपुर में गंगा नारायण के मंदिर का निर्माण कराया था। भीम द्वितीय के एक शासकीय अधिकारी ने केशव मंदिर बनवाया था पिहोवा अर्थात हरियाणा। अभिलेख में विष्णु गरुड़ासन के साथ उत्कीर्ण है। गढ़वाल ताम्रलेखों से विदित होता है कि काशी के वरुणा और गंगा तट पर आदि केशव मंदिर बना था। यह मंदिर आज भी वर्तमान है, जहां दर्शनार्थी जाया करते हैं। समाज में वैष्णव धर्म संबंधी अनेकानेक समारोहों और त्योहार भी प्रचलित हो गए थे, जिसका उल्लेख पुराण आदि विभिन्न कृतियों में हुआ है। इस संबंध में गुप्तकालीन अभिलेखीय प्रमाण भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उदयगिरी अभिलेख में शयन एकादशी का उल्लेख है, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती थी। इसी दिन हरि सो जाते थे और कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन जागते थे। जिस दिन वे जागते थे उसे देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। गंगाधर अभिलेख में कहा गया है कि यह दिन सभी के लिए प्रफुल्लता और उत्साह उल्लास लाता है। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मनाई जाती है। अलिबर्नी ने भी अनेक वैष्णव त्योहारों का उल्लेख किया है, जिसमें देवसैनी एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, देवोत्थान एकादशी, रामनवमी आदि विशेष प्रसिद्ध थे, जिसका समकालीन भारतीय समाज में भी समर्थन होता था। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। दास्य और सख्य प्रकार भक्त के रूप में पूर्ण आत्मनिवेदन की स्थिति है। इस दर्शन में राधा को सर्वोत्कृष्ट उज्ज्वल नारी के रूप में स्वीकार किया गया है और भगवान कृष्ण से उनका तादतम्य दर्शित करके उनकी उत्पत्ति मानी गई है। अतः स्पष्ट है कि भक्तों के अंतर्गत राधा का भी विकास आरंभ हो चुका था। वैष्णव और भगवत विष्णु के भक्त थे, जो विष्णुओं के प्रधान वासुदेव का पूजन करते थे। बहुत पहले पांच रात्र और भगवत एक ही थे, किंतु बाद में उनमें भी अंतर हो गया। पांच रात्र का प्रधान आधार विहुवाद था, जिसमें विहू की पूजा होती थी। पांच रात्र साहित्य कुछ संहिताएं और चौथी पांचवी सदी के बाद कश्मीर में लिखी गई। अमरकोश में पंचरात्र का मत में भी सभी व्यूहों का उल्लेख है। बलराम, कृष्ण, सुभद्रा अथवा एकानसा की सम्मिलित पूजा इस व्यूहवाद के प्रवर्तित रूप से प्रारंभ हुई। बाण कृत हर्षचरित में भगवती और पांच रात्रिकों का पृथक पृथक वर्णन हुआ। भगवान विष्णु के भक्त और उपासक थे। पांचरात्र संप्रदाय की एक ग्रंथ पद्म्य तंत्र में कुछ भेद विवृत किए गए हैं, यथा भागवत, सात्वत, पांचकालिवित, एकांकित, तन्मय और पांचरात्रिक। पांचरात्रिकों और भगवतों में प्रधान भेद यह है कि पांचरात्रिक भगवान नारायण की आराधना करते थे और भागवत वार्ष्णेय अर्थात भगवान विष्णु के। वैष्णव धर्म का उत्कर्ष काल व ऐतिहासिक सर्वेक्षण। गुप्त काल में वैष्णव धर्म अथवा भगवत धर्म अपनी पराकाष्ठा पर था। तत्कालीन युग में विष्णु या नारायण अथवा नर नारायण की पूजन और मूर्ति निर्माण बहुत अधिक प्रचलित था। स्थापत्य और साहित्य दोनों में विष्णु के विभिन्न रूपों का चित्रांकन हुआ है। उस साहित्य में अधिकांश शासक वैष्णव थे, इसलिए वैष्णव स्थापत्य और साहित्य की अधिकाधिक विकास होना स्वाभाविक था। कालिदास ने नारायण और विष्णु को समान माना है, अर्थात नारायण को नर का मित्र, जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया जा चुका है कि अर्जुन नर थे और भगवान कृष्ण नारायण। कालिदास के अनुसार भगवान विष्णु सागर तल पर सहस्त्र फरों वाले शेषनाग की सैया पर विश्राम करते थे और उनके फैले हुए चरण उनके पाद प्रदेश में बैठी हुई लक्ष्मी की गोद में शोभायमान थे। उनकी चार भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। उनके वक्ष पर कौतुभ नामक मणि शोभायमान है तथा निकट ही उनका वाहन गरुड़ सेवा के लिए खड़ा है। कालांतर में इसी वर्णन के अनुरूप शेष साई विष्णु की अनेक मूर्तियां गढ़ी गईं। स्पष्ट है कि उनकी महिमा वाणी और मन दोनों से परे है। आराधना और स्तुति में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के कार्य उनमें समाविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आरंभ में वे ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, मध्य में उनका धारण करते हैं और अंत में उसका विनाश करते हैं। गुप्त सम्राटों की मुद्राओं पर उनकी उपाधि परम भागवत उत्कीर्ण है, जो उनके वासुदेव उपासक और वैष्णव धर्मावलंबी होने का प्रबल प्रमाण है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे शासक भागवत धर्म के अनुयायी थे। उनकी मृदाओं और तात्कालीन अभिलेखों से वैष्णव धर्म संबंधी अनेक संकेत प्राप्त होते हैं। गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन के नाम से अभिहित किया गया है। उड़ीसा स्थित उदयगिरी में चतुर्भुज विष्णु की एक प्रतिमा जो 400 ईस्वी की है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के अंतर्गत भीतरी में स्कंदगुप्त का एक स्तंभलेख विष्णु कृष्ण की मूर्ति का उल्लेख करता है, जिसके पूजन आदि के लिए ग्राम दान किया गया था। कुमारगुप्त के गढ़वा अभिलेख में विष्णु को भगवत कहा गया है। स्कंदगुप्त कालीन जूनागढ़ का अभिलेख 456 ईस्वी विष्णु के मंदिर के निर्माण का वर्णन करता है तथा वामन रूपीधारी विष्णु द्वारा बलि से लक्ष्मी को छल से हर लेने की बात उल्लेखित करता है। मध्य प्रदेश स्थित सागर के एरण नामक स्थान पर बुद्धगुप्त कालीन अभिलेख 483 ईस्वी से विदित होता है कि भगवान जनार्दन अर्थात वासुदेव के स्मरण और सम्मान में ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया था। महरौली के लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि चंद्र नामक सम्राट ने विष्णु ध्वज का निर्माण करवाया था। अपसद अभिलेख में वासुदेव पुत्र माधव के चरणों की लक्ष्मी द्वारा सेवा की बात उल्लेखित है। बुद्धगुप्त के दामोदर के अभिलेख में वर्णित है कि कौशिकी और कोका नदियों के संगम पर वारह क्षेत्र में हिमालय के शिखर पर वारह स्वामी और कोका मुखी स्वामी के मंदिर का निर्माण हुआ था। प्रायः उसी युग में उस क्षेत्र में दामोदरपुर, इसका वर्तमान नाम दिनाजपुर बंगाल के निकट इन्हीं दो देवताओं के निमित्त मंदिर का निर्माण हुआ है। हूर शासक तोरामण के एरण से प्राप्त वारह मूर्ति और उसके अभिलेख वारह रूप नारायण के मंदिर निर्माण का संदर्भ मिलता है। कदम राजकुल के तगारे के अभिलेख में वारह अवतार का उल्लेख है। पूर्वी चालुक्यों का राज चिन्ह ही गरुड़ था, जो उनके वैष्णव होने का प्रबल प्रमाण था। उनके अधिकांश अभिलेखों का प्रारंभ बारह की वंदना से होता है। बारह अवतार की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति उदयगिरी गुहा की दीवार पर एक विशालकाय रूप में उभारी गई, जिसमें पृथ्वी की रक्षा करते हुए बारह रूपी भगवान को चित्रित किया गया है, जिसके दांत से अति लघुकाय नारी मूर्ति पृथ्वी पर लटकी हुई है। ऐसा बारह रूपधारी भगवान का उल्लेख कालिदास ने भी किया है। उनके ग्रंथों में मोरपंखीधारी कृष्ण का भी उल्लेख है। उनके भाई बलराम और उनकी पत्नी रुक्मणी की भी काफी संकेत है। गुप्तकालीन अनेक पुराणों में विष्णु के समस्त अवतारों का विशद विवरण मिलता है। मत्स्य, कच्छप, वारह, नृसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि नामक 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। दक्षिण के चालुक्य वंशी शासक मंगलेश के आदेश से पर्वत पर कटे गुफा मंदिर में विष्णु और नारायण तथा वारह और नरसिंह की प्रतिमाएं गढ़ी गई थी। विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी उनकी चरणों को दबा रही हैं। एलोरा के दशावतार की विशाल विष्णु मूर्तियां तात्कालीन वैष्णव धर्म के प्रसार की उत्कृष्ट प्रतीक हैं। शेषशायी विष्णु की चरण दबाती हुई लक्ष्मी को दर्शित किया गया है तथा भगवान की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा विराज रहे हैं। नरसिंह, वामन, वारह और गोवर्धन धारी कृष्ण की भी आकर्षक और अविराम मूर्तियां हैं। बारह मिहिर ने अपने वृह संहिता नामक ग्रंथ में विष्णु और भगवत की चर्चा की है। भगवत सब तत्कालीन भगवत संप्रदाय की ओर इंगित करता है, साथ ही विष्णु के भक्तों को भी व्यंजित करता है। अमर सिंह ने अपने कोश ग्रंथ अमर कोश में विष्णु को 29 विभिन्न नामों की चर्चा करते हुए वासुदेव को उनका पिता माना है। हर्ष के युग में भी वैष्णव धर्म की गति निरंतर प्रवाहमान थी। बाण ने हर्ष चरित में पांचरात्रिक और भगवत संप्रदाय का उल्लेख किया है, जिनके अनुयायी दिवाकर मित्र के आश्रम में रहते थे। भगवत लोग वासुदेव विष्णु की उपासना करते तथा अवतारवाद के सिद्धांत को मानते थे। अस्मार्थ वैष्णव ब्रज के अधिपति, गायों को चराने वाले तथा गोपियों के प्रिय श्री कृष्ण की आराधना करते थे। कादंबरी में अनेक स्थलों पर कृष्ण के आख्यानों का उल्लेख है। हर्ष के समकालीन प्राग्ञ ज्योतिषपुर अर्थात असम के शासक भास्कर वर्मा के कुटुंब के लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म का प्रसार राजपूत युग में भी तद्वत था। अनेकानेक अभिलेख, मंदिर और मूर्तियां इस कथन के प्रमाण हैं। लखीमपुर खीरी दानपत्र से विदित होता है कि विष्णु का पूजन ओम नमो नारायण के नाम से किया जाता था। कभी कभी ओम नमो भगवते वासुदेव इसको एक बार और सुने, कभी कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कहा जाता था। पहाड़पुर की कलाकृतियों में गोवर्धनधारी कृष्ण की भी आकृति है। जयदेव ने राधा कृष्ण संप्रदाय का उल्लेख किया है। प्रतिहार शासक भोज के अभिलेख में विष्णु को निर्गुण और सगुण का प्रतीक मानते हुए ऋषिकेश के रूप में वर्णित किया है। पूर्व मध्य युग में भी विष्णु अपने सहनामों के समाज में पूजित और आदृत थे, जिनमें वासुदेव नारायण, कृष्ण मुरारी आदि, केशव, हरि, माधव आदि नाम अधिकाधिक प्रचलित थे। उपासकों द्वारा अत्यंत मनोनिवेशक पूर्वक उनकी स्तुति की जाती थी। इस युग में अनेक विष्णु मंदिर और मूर्तियों का भी निर्माण हुआ, जिनका उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों में हुआ है। अनेक ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिनमें मंदिरों के लिए दिए गए विभिन्न प्रकार के दानों के संकेत हैं। सेनवंशी शासक अपने को परम वैष्णव करते थे। चंदेल शासक परिमर्दी के बटेश्वर अभिलेख में विष्णु मंदिर का उल्लेख मिलता है। खुजराहो के चंदेल शासक के संरक्षण में अनेक देव मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ, जिसमें विष्णु के भी अनेक मंदिर थे। विष्णु के कुछ मंदिर वहां आज भी हैं, जो समकालीन वैष्णव भावना की अभिव्यंजना करते हैं। खजुराहो अभिलेख में भी विष्णु मंदिर की स्थिति का प्रमाण मिलता है। चेदी शासक लक्ष्मण राज के मंत्री सोमेश्वर ने एक विष्णु मंदिर बनवाया था। परमार शासक भोजदेव के वेतम दानपत्र में गरुध्वज को फहराने का उल्लेख है, जो निश्चय ही विष्णु मंदिर पर रहा होगा। बंगाल के पाल शासक धर्मपाल के काल में नारायण का मंदिर निर्मित हुआ। नारायण पाल के समय में एक अभिलेख में गरुड़ध्वज का संकेत मिलता है। उड़ीसा में अनेक विष्णु मंदिरों का निर्माण हुआ। ऐसे मंदिरों का केंद्र भुवनेश्वर रहा था, जहां 12वीं सदी के अंत में अंततः वासुदेव का भी मंदिर बना। विष्णु के मंदिरों के अतिरिक्त इस काल में विष्णु की अनेक मूर्तियां भी गढ़ी गईं। शंख, चक्र, गदा और पद्म को अपने करों में धारण किए हुए भगवान विष्णु की मूर्तियां पारंपरिक आधार पर निर्मित हुआ करती थीं। इस प्रकार की मूर्तियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से प्राप्त हुईं। इस युग में हरिहर का उल्लेख भी मिलता है, अर्थात वैष्णव और शैव नामक दो विरोधी संप्रदायों को एक साथ सहिष्णु भाव से दर्शित किया गया है। भगवान कृष्ण की अनेक मूर्तियां इस काल में निर्मित की गईं। विष्णु की मूर्ति के साथ लक्ष्मी और गरुड़ की मूर्तियां भी इस काल में निर्मित की गईं। विष्णु की मूर्ति के साथ लक्ष्मी और गरुड़ की मूर्तियां भी बनाई गई थी। परमर्दी के अभिलेखों में महालक्ष्मी उत्कीर्ण है, जिस पर जल चढ़ाते हुए एक हाथी का चित्रित किया गया है। गुप्त शासकों की मुद्राओं की तरह चेदी शासक, गंगेय देव, चंदेल शासक कीर्ति बर्मन और कश्मीर के शासक दिद्दद्दा की मुद्राओं पर भी लक्ष्मी के चित्र अंकित हैं। विष्णु के विभिन्न अवतारों का संदर्भ पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलता है। वैसे इस युग के कुछ साहित्यिक ग्रंथ भी विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख करते हैं। क्षेमेंद्र कृत, दशाश्वचरित, जयदेव लिखित गीत गोविंद आदि प्रतिनिधि ग्रंथों में विष्णु के दशाश्वतार का वर्णन मिलता है। युवराज देव के बोधगढ़ अभिलेख में विष्णु के कई अवतारों का उल्लेख मिलता है। नागपुर से प्राप्त परमार शासक के अभिलेख में विष्णु को मत्स्य जैसे अनेक रूपों में दर्शित किया गया है। विष्णु का 12 अवतार समाज में अधिक प्रचलित हुआ, जिसकी गुप्त काल में अनेकानेक मूर्तियां भी निर्मित होने लगीं। 10वीं सदी के मेवाड़ के एक अभिलेख में 12 अवतार का उल्लेख है। यही नहीं, नरसिंह अवतार के भी अनेक अभिलेख मिलते हैं। राजपूताना से प्राप्त एक अभिलेख में नरसिंह अवतार का एक सुंदर चित्रण किया गया है। बंगाल से प्राप्त 4 हाथों वाली नरसिंह की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। विष्णु के 52 अवतार की मूर्तियां उत्तर भारत से प्रायः नहीं मिलती। बंगाल से प्राप्त अभिलेखों में 52 अवतार के उदाहरण मिलते हैं। यही नहीं, परशुराम की कुछ प्रतिमाएं बंगाल से प्राप्त हुई हैं। महाकवि जयदेव ने परशुराम को जगतपति और भृगुपति के रूप में उल्लेखित किया है। भोज के ग्वालियर अभिलेख में राम को विष्णु के अवतार के रूप में विवृत किया गया है। राम की कतिपय लीलाओं का चित्रण पहाड़पुर की कलाकृतियों में भी हुआ है। 11वीं सदी में अरब यात्री अलुबर्नी के थानेश्वर अर्थात हरियाणा के चग्रस्वामी का उल्लेख किया गया है। वह लिखता है, तानेसर नगर हिंदुओं द्वारा अत्यधिक आदृत है। उस स्थान की मूर्तियां चक्रस्वामी कहलाती हैं अर्थात चक्र का स्वामी अर्थात कृष्ण। गुजरात में चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने दशावतार की मंदिर निर्मित कराया था जो सहस्त्रलिंग झील के किनारे स्थित था। उसका एक मंत्री दधीपुर में गंगा नारायण के मंदिर का निर्माण कराया था। भीम द्वितीय के एक शासकीय अधिकारी ने केशव मंदिर बनवाया था पिहोवा अर्थात हरियाणा। अभिलेख में विष्णु गरुड़ासन के साथ उत्कीर्ण है। गढ़वाल ताम्रलेखों से विदित होता है कि काशी के वरुणा और गंगा तट पर आदि केशव मंदिर बना था। यह मंदिर आज भी वर्तमान है जहां दर्शनार्थी जाया करते हैं। समाज में वैष्णव धर्म संबंधी अनेकानेक समारोहों और त्योहार भी प्रचलित हो गए थे जिसका उल्लेख पुराण आदि विभिन्न कृतियों में हुआ है। इस संबंध में गुप्तकालीन अभिलेखीय प्रमाण भी मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उदयगिरी अभिलेख में शयन एकादशी का उल्लेख है जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती थी। इसी दिन हरि सो जाते थे और कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन जागते थे। जिस दिन वे जागते थे उसे देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। गंगाधर अभिलेख में कहा गया है कि यह दिन सभी के लिए प्रफुल्लता और उत्साह उल्लास लाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपक्ष के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन मनाई जाती है। अलिबर्नी ने भी अनेकानेक वैष्णव त्योहारों का उल्लेख किया है जिसमें देवशयनी एकादशी कृष्ण जन्माष्टमी देवोत्थान एकादशी रामनवमी आदि विशेष प्रसिद्ध थे जिसका समकालीन भारतीय समाज में भी समर्थन होता था। और इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।